अरुणिमा ने अपने बच्चों को कसकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं किसी की हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। अब मेरी जिंदगी मेरे खुद के हाथों में होगी। आज के बाद मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मेरी माँ से मेरा जो भी रिश्ता था वो सब मैंने खत्म कर दिया है, और आस्तिक से मेरा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मेरे लिए सब मर चुके हैं। मुझे अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में अगर कोई मायने रखता है तो वो है मेरे बच्चे। इसके अलावा अब मैं किसी को अपने अस्तित्व के साथ खेलने नहीं दूंगी। अरुणिमा ने एक फैसला लिया था। उसने सोच लिया था कि वो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। वो फिर से सब कुछ शुरू करेगी। आज एक नई अरुणिमा का जन्म हुआ था। जहां सब लोगों ने उसका इस्तेमाल किया था और उसे अपने फायदे के लिए रखा था, तो वहीं अरुणिमा ने अपने उस अस्तित्व को ही ना कर दिया था। आज अरुणिमा अपने बच्चों की माँ के रूप में सामने आई है। उसका सारा जीवन अब उसके बच्चों की परवरिश में होगा, और वो अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएगी। अरुणिमा की बात सुनकर मिश्री पूरी तरह से टूट गई थी। एक अरुणिमा ही तो थी उसके जीवन में, जो अब उसकी अपनी थी। और जो अरुणिमा ने कहा वो सुनने के बाद मिश्री के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो हताशा के साथ उठती है और वहां से जाने के लिए मुड़ती है कि अरुणिमा मिश्री का हाथ पकड़ लेती है। मिश्री हैरानी से अरुणिमा को देखने लगती है तो अरुणिमा सुने भाव से फर्श को देखते हुए कहती है, मैंने भले ही अपनी पुरानी जिंदगी को ठुकरा दिया है और अब एक नए अस्तित्व के सफर पर निकली हुई हूँ, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी अभी भी बाकी है, और वो तुम हो। जब तक तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। फैसला तुम्हारा है, क्या तुम अपनी बहन के साथ रहना चाहती हो या अपनी माँ की हत्यारण के साथ। मिस्टी रोते हुए अरुणिमा के पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, दीदी मेरे सामने आज माँ की दो परिभाषाएं आई हैं। एक माँ हमारी माँ थी, जिसे सिर्फ अपने स्वार्थ और मतलब के लिए सबका इस्तेमाल किया था, जिसकी उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली है। और एक माँ आप हैं, जो अपने बच्चों के लिए समाज और दुनिया से लड़ रही है। अगर मुझसे ये कहा जाएगा कि मैं भविष्य में किसके जैसी माँ बनना चाहूंगी, तो मैं आपकी जैसी माँ बनना चाहूंगी दीदी। अरुणिमा रोते हुए मिश्री को देखती हैं तो मिश्री अरुणिमा के गले लग जाती है, और दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती हैं। वहां का सारा मामला और कोर्ट कचहरी की सारी बातें पृथ्वी और सक्षम ने अपने हाथों में ले ली थी। अरुणिमा ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था और शारदा देवी की मौत का भी उसे सदमा था, जिस वजह से उन लोगों ने अरुणिमा को इस बात के लेकर परेशान ना करना ही बेहतर समझा था। अगले दिन सुबह मिश्री बच्चों को लेकर बेड पर बैठी हुई थी। वो कभी आकाश के साथ खेल रही थी तो कभी अनंत के साथ। अरुणिमा किचन में थी, वो चाय बना रही थी। हालांकि माहौल में अभी भी तनाव था, लेकिन फिर भी जिंदगी तो काटनी ही है ना। अरुणिमा चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहती है, मिश्री तुम स्कूल नहीं जा रही हो क्या? मिश्री ने कहा, नहीं दीदी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है। आज स्कूल जाने की जगह मैं अनंत और आकाश के साथ खेलूंगी। अरुणिमा बेड पर बैठने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मिश्री खड़े होते हुए कहती है, दीदी आप बैठकर चाय पियो, मैं देखती हूँ कौन आया है। अरुणिमा चाय का कप उठाती है और जैसे ही वो चाय पीने वाली होती है कि उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज आती है, अरुणिमा। अरुणिमा हैरान हो जाती है। वो हैरानी से दरवाजे की तरफ देखती है, जहां पर ताई जी खड़ी थी। ताई जी को देखकर अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो चाय का कप वापस टेबल पर रखती है और ताई जी की तरफ बढ़ती है। अरुणिमा ताई जी के पास आती है और झुककर उनके पैर छूती है। ताई जी आप यहाँ पर कैसी हैं आप? ताई जी से सवाल करते हुए अरुणिमा उनका हाथ पकड़कर घर के अंदर लाती है और सामने रखी कुर्सी पर बैठा देती है। कुर्सी बेड से ज्यादा दूर नहीं थी, इसीलिए ताई जी की नजर बच्चों के ऊपर चली गई, जो अपने हाथ पैर से उछाल उछाल कर खेल रहे थे। ताई जी तुरंत खड़ी होती हैं और बेड पर जाकर बच्चों को देखने लगती हैं। बच्चों को देखकर उनके चेहरे पर एक सुकून उतर आता है। वो सबसे पहले बच्चों की नजर उतरती हैं। कितने खूबसूरत बच्चे हैं, बिल्कुल आस्तिक पर गए हैं। अरुणिमा, जो अब तक ताई जी को देखकर मुस्कुरा रही थी, उसे पता था कि ताई जी यहाँ पर बच्चों से मिलने आई हैं, पर जब ताई जी ने बच्चों की तुलना आस्तिक से की तो अरुणिमा को अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत बच्चों के पास आते हुए कहती है, ये मेरे बच्चे हैं ताई जी। ताई जी हैरानी से अरुणिमा को देखती हैं और कहती हैं, बिल्कुल अरुणिमा ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मना मत करना, कहते हुए ताई जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। अरुणिमा हैरानी से उन्हें देखने लगी। अरुणिमा सोचने लग गई कि ताई जी को उनसे किस तरीके की मदद चाहिए। तभी ताई जी ने रोते हुए कहा, आस्तिक उसकी हालत बहुत खराब है, वो पागल होता जा रहा है, वो तुम्हारे बिना ठीक नहीं हो सकता है। अरुणिमा मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ। क्या? क्या तुम एक बार आप चाय पीना पसंद करेंगी ताई जी? मैंने अभी अभी बनाई है,
वो भी अदरक वाली है, अरुणिमा ने ताई जी की बात को काटते हुए कहा। ताई जी हैरानी से अरुणिमा को देखने लगी तो अरुणिमा ने अपना चेहरा नीचे किया और उदासी के साथ कहा, देखिए ताई जी, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ ये कमरा तो आप देख ही रही हैं। मुझे जितना हो सकेगा उतना आपका आदर सत्कार करूंगी। भगवान के लिए मुझे ऐसा कुछ भी मत कहिए जो मैं करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं उस इंसान की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, तो उससे मिलना तो बहुत दूर की बात है। ताई जी की आंखों में आंसू आ गए थे। बच्चों के पास मिश्री थी, उन्हें संभाल रही थी। ताई जी ने अरुणिमा के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोली, समझने की कोशिश करो अरुणिमा, उसकी हालत बहुत खराब है। अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगी तो वो पागलपन में मर जाएगा। लेकिन अरुणिमा ने अपने हाथ खींचे और बेरुखी के साथ कहा, तुम मर जाने दीजिए। ताई जी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी और चेहरा हैरानी से भर गया था। लेकिन अरुणिमा तो आस्तिक की हालत पर जरा भी दया नहीं आई थी। वो अरुणिमा मर चुकी थी जो एक नरम दिल लड़की थी। वो अरुणिमा बदल चुकी थी जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती थी। आस्तिक के जख्मों ने और शारदा देवी के धोखे ने अरुणिमा को बदल कर रख दिया था।